ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नास्तप्येष विदेशो नित्यं भगवद् सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। एते चमसा कलापुंसं कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रियाव्याकुलं लोकं मृद्यन्ते युगे युगे। नाम संकेतनम यस्य सर्वप पापनाशनम प्रणाम दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखद अमृत दिवसमृतं विभत भगवतं रासमालयं मुहुरो राशिक भुवि भावुकः। हम श्रीमद् भागवतम से पढ़ रहे हैं सप्तम स्कंध तृतीय अध्याय श्लोक संख्या दो से दस, क्योंकि दो से आठ तक कोई तात्पर्य नहीं है और इसके बाद नवम दसम श्लोक के बाद तात्पर्य है। तो पहले मैं पढ़ रहा हूँ दो श्लोक संख्या दो से आठ तक संस्कृत एवं हिंदी, इसके बाद साथ ही साथ नवम एवं दसम श्लोक उच्चारण करेंगे। साते पे मंदर द्रोण्यम तप परम दारुणम उर्वा बहुर्न भोत्रिष्टि पदंगुष्टा श्रितावनी। हिरण्यकशिपु ने मंदर पर्वत की गति में अपने पांव के अंगूठे के बाल भूमि में खड़े होकर अपनी भुजाएं ऊपर किए तथा आकाश की ओर देखते हुए अपनी तपस्या प्रारंभ की। यह स्थिति अतीव कठिन थी, किंतु सिद्धि प्राप्त करने के लिए उसने इसे स्वीकार किया। जाता दिदीति भीरे जे संवर्तर का एवं शुभे तस्मिन् तपस्तप्यामाने देवस्थानानि बेजिरे। हिरण्यकशिपु के जाता जूत से प्रलय अकालीन सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान तथा असह्य तेज प्रकट हुआ। ऐसी तपस्या देखकर सारे देवता, जो अभी तक सारे लोकों में भ्रमण कर रहे थे, अपने अपने घरों को लौट गए। तस्य मूर्ना समुद्भूता साधु मोग्निस्तपोमया तीर्य गुर्वं मधोलोकन प्रतापद विश्वागिरितम्। हिरण्यकशिपु की कठिन तपस्या के कारण उसके सिर से अग्नि प्रकट हुई और यह अग्नि अपने धुएं समेत आकाश भार में फैल गए। उसने ऊर्ध्व तथा अदा लोगों को घेर लिया, जिससे वे सभी अत्यंत गर्म होते। चक्षु भूर्नद्युदन्वन्ता सद्विपद्विक्षी चलाभु नीपेतु सग्रहस्तारा जज्वालुश्चा दिशो दशा। उसकी कठिन तपस्या के बल से सारी नदियां तथा सारे समुद्र उद्वेलित हो उठे। भूमंडल की सत्ता अपने पर्वतों तथा द्वीपों समेत तरतराने लगी और तरे तथा ग्रह टूटकर गिर पड़े। सारी दिशाएं धधक उठी थी। तेन तप्त दिवं त्यक्त्वा ब्राह्मलोकं ययोसुरा दत्रे विज्ञापयामार सुर देवा देवा जगत्पते दैत्येन्द्र तपसा तप्ता दिविस्ततुं न शक्ष्णुमां। हिरण्यकशिपु की कठोर तपस्या से जुलाने तथा अत्यंत विचलित होने के कारण समस्त देवताओं ने अपने रहने के लोग छोड़ दिए और ब्रह्म के लोग को गए, जहां उन्होंने श्रष्ट को इस प्रकार सूचित किया। हे देवताओं के स्वामी, हे ब्रह्मन के प्रभु, हिरण्यकशिपु की कठोर तपस्या से उसके सिर से निकलने वाली अग्नि के कारण हम लोग इतने उद्विग्न हैं कि हम अपने लोकों में रह ना सकते। अतएव हम आपके पास आया है। तस्य चोपशमं भूमिं विदेही यदि मन्यसे लोकाना यवन्नं श्रन्ति बलिहरस्तवा विभू। हे महापुरुष, हे ब्रह्मन के प्रधान, यदि आप उचित समझे तो इन सारे उत्पातों को, जो सब कुछ विनाश करने के उद्देश्य से हो रहा है, कृपा करके रोक दे, जिससे आपकी आज्ञाकारी प्रजा का संहार ना हो। तस्यायम किल संकल्पस चारतो दुश्चरम तपा शूयतम किम न वेदितस तावातापि निवेदितम। हिरण्यकशिपु ने अत्यंत कठिन तपस्या का व्रत ले रखा है, यद्यपि आपसे उसकी योजना छिपी नहीं है, तो भी हम जिस रूप में उसके मंतव्यों का निवेदन कर रहे हैं, कृपा करके उन्हें सुन ले। साथ ही साथ अभी ये नवम और दसम श्लोक उच्चारण करेंगे। श्रेष्ठा चरा चरमेदम तापो योग समाधिना अद्यस्ते सर्विदिश्याय व्यापारमेष्टि निजासनम् तदाहं वदमानेन तपोयोग समाधिना कलत्मनोश्च नित्यत्वात् साधयिष्ये तदात्मना। श्रीष्ट्वा सृजन करके चर चल अचरम तथा अचल इदम या तपा तपस्या का योग तथा योग शक्ति का समाधिना समाधि के अभ्यास द्वारा अध्यास्ते स्थित है सर्वदिशनेभ्य स्वर्गलोक समेत समस्त लोकों की अपेक्षा परमेष्टि ब्रह्म जी ने निज आसनम अपना सिंहासन तत् अतएव अहम् मैं वर्धमानेन वृद्धि के कारण तपस्या योग योग शक्ति समाधिनाम तथा समाधि से काल समय का आत्मनो तथा आत्मा का च तथा नित्यवत नित्यता से समाधि समायिष्य प्राप्त करेगा तथा इतना आत्मना मेरे अपने लिए अनुवाद एवं तत्पर्य शिले ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। इस ब्रह्मांड में सर्वोच्च पुरुष ब्रह्म जी ने अपना उच्च पाद कठिन तपस्या योग शक्ति तथा समाधि द्वारा प्राप्त किया है। फलस्वरूप इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने के बाद वे इसके सर्वाधिक पूजा देवता बने हैं पूज्य देवता बने हैं। चूंकि मैं शाश्वत हूँ और काल भी शाश्वत है अतः मैं ऐसे ही तमस तपस्या योग शक्ति तथा समाधि के लिए अनेक जन्म तक प्रयास करूँगा और वो स्थान ग्रहण करूँगा जो ब्रह्म जी ने प्राप्त किया है। तत्पर्य हिरण्यकशिपु का संकल्प ब्रह्म जी के पाद को पा लेने का था लेकिन यह असंभव था क्योंकि ब्रह्म जी की आयु अत्यंत दीर्घ थी। जैसे कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है सहस्र युग पर्यंतम अम अर्हत ब्रह्मणो विदु। ब्रह्म का एक दिन 1000 युग के तुल्य है। ब्रह्म जी की आयु अत्यंत दीर्घ है फलस्वरूप हिरण्यकशिपु के लिए उनका पाद प्राप्त कर सकना असंभव था। फिर भी उसका निर्णय था कि चूंकि आत्मा तथा काल दोनों शाश्वत है अतएव यदि वो उस पाद को एक जीवन काल में नहीं प्राप्त कर सकता तो वो जन्म जन्मांतर तपस्या करता रहेगा जिससे कभी ना कभी उसे वो पाद प्राप्त हो सके। ओम ज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येनं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति सभदन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनतन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगना ललिता श्रीविशगन्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीगंता राधा कंता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्राणामि हरि प्रिय। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस अध्याय में नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं और हिरण्यकशिपु की बारे में बताता है। अमर बनाने की प्रयास कर रहे थे। एक दृष्टि से ये तो स्वाभाविक है क्योंकि आत्मा तो शाश्वत है, लेकिन इस भौतिक जगत में एक शरीर में हमेशा के लिए नहीं रह सकता है। फिर भी इस भौतिक जगत में रहते हुए भी तो जीव तो शाश्वत है क्योंकि स्वभाव तो है, लेकिन शरीर तो छोड़ना पड़ेगा कुछ समय के बाद। जैसे कलयुग में लगभग 100 वर्ष तक रह सकता है, प्रयास कर सकता है, लेकिन इससे ज्यादा लगभग 10-20 साल भी और भी हो सकता है, और जो योगी जो है इससे भी ज्यादा शायद देर 100 वर्ष तक रह सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। जिससे जब प्रभुपाद 1977 उनके मतलब उसी समय ये कुंभ मेला के समय आए थे इलाहाबाद प्रयाग में, ये महाकुंभ मेला के समय जो हर 144 साल में हो जाता है, 12 साल कुंभ मेला और 12-12 करके महाकुंभ मेला, उसी समय आए थे। उन्होंने अपने भक्त को बोले थे कि यहाँ कोई योगी है जो 500 साल की उम्र है, तो योगी तो योगाभ्यास करते हुए इतना रह सकता है, लेकिन फिर भी चाहिए तो छोड़ना है। और पूर्व जैसे द्वापर युग में 1000 वर्ष तक रह सकता है, इससे पहले तृतीय युग में 10,000 वर्ष तक, और सत्य युग में 1,00,000 तक रह सकता है, लेकिन शरीर छोड़ना पड़ेगा। वैसे ही स्वर्ग लोक में या ब्रह्म जी के लोक में उनके बहुत लंबे आयु है, लेकिन एक दिन तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, और ब्रह्म जी भी अपना शरीर छोड़ना ही है। लेकिन जो सत्य लोग जो वहाँ पर रहता है, और विशेष करके ब्राह्मण जी जब भगवान को मानता है, तो शरीर छोड़ने के बाद प्रलय के बाद तो आध्यात्मिक जगह में प्रवेश कर सकता है, और जो क्या नगत्य में भी वे भी प्रवेश कर सकता है। लेकिन ऐसा ना है कि सब जो वहाँ पर जाता है इसके बाद आध्यात्मिक जगह में प्रवेश कर रहा है, तो योग्यता होना चाहिए, और तब हमेशा के लिए भगवान की सेवा में रहेंगे। एक बार वहां पर जाके तो बदवस्त में कभी ना आ जाता है। तो हिरण्यकशिपु तपस्या की थी, अब बहुत कठिन तपस्या जो साधारण लोग नहीं कर सकता है। ये पूर्व लोग के समय है, पूर्व समय मतलब ये सत्ययुग या के समय तो बहुत सालों के लिए तपस्या किया, और आजकल ज्यादा तपस्या करना तो मुश्किल है, और जैसे उन्होंने किया है ये सब लोग नहीं कर सकता है। और ये भी हमको मालूम है कि वास्तव में ये भगवान के परिकार है, जाए और भी जाए, लेकिन क्योंकि ये चार कुमार को जब वहां पर पहुंच गए थे वैकुंठ में, तो द्वार पे उनको रोक दिया थे, तो क्रोधित होके ये चार कुमार उनको साप दिए थे जाए भी जाए को, इस कारण से इस भौतिक जगत में आए थे। और ये वास्तव में भी भगवान की इच्छा थी, इसलिए आए थे यहाँ पर, और क्योंकि भगवान के परिकार है इसलिए इस भौतिक जगत में रहते हुए भी तो, लेकिन असुर के रूप में थे, लेकिन कठोर तपस्या किए थे, जो हम नहीं कर सकते, सरण जीव नहीं कर सकता है इस भौतिक जगत में रहते हुए। और तपस्या करते करते तो किसी से अग्नि प्रकट हुई और इस अग्नि के धुआं ये समस्त आकाश भर में फैलाया। उस कारण से भी स्वर्ग लोक तक और इस भूमंडल और अधलोक कभी तो अत्यंत गर्मी सब लोग अनुभव किए थे। और इस कारण से ये देवता लोग ब्रह्मचर्य के पास गए और उनसे निवेदन किए थे कि आप कृपा करके उनके पास जाइए और इसका समस्या का हाल निकाल दीजिए। और यहाँ पर तो इसके बाद भी आए थे और इसमें उनका जो हिरण्यकशिपु का जो भाव जो है प्रकट कर रहा है, बताता है नारद मुनि। उनकी इच्छा थी ब्रह्म जी के पार पर पहुंचना है। और इसके बाद इसमें भी उल्लेख किया है, अगर इस जन्म में सफल नहीं हो जाता हूं तो अगले जन्म में, तो तपस्या करते करते अगले जन्म इस पार पर पहुंचूंगा, यों के ऐसा संकल्प था और ऐसा दृढ़ विश्वास भी था कि पहुंचूंगा उस पद पे। और तो उससे निश्चय धारियात उत्सव के साथ हमको कुछ अगर करता है और निष्ठ भी है और धैर्य भाव भी है तो उस पद पे पहुंच सकता है। लेकिन वास्तव में जो के जो इच्छा जो थी ये तो बौद्धिक चीज के लिए है और पूरा उनके जो स्वभाव जो था ये तो असुरिक स्वभाव था जो नहीं होना चाहिए। और वास्तव में अगर दैविक स्वभाव नहीं है तो ब्रह्म जी के पाद पर नहीं पहुंच सकता है। जन्मांतर जन्मांतर तपस्या करते हुए ब्रह्म जी के पाद नहीं पहुंच सकता है, जब असुरिक भाव है स्वभाव है। और दूसरे लोग में भी स्वर्ग लोग में भी जे विशेष करके आजकल वहां पर पहुंचना तो अत्यंत कठिन है, लेकिन पहले उनकी शक्तियों के पास थी असलों के कि इस शरीर से भी वहां पर पहुंच सकते थे। योग शक्ति के माध्यम से अन्यथा संभव नहीं है, कृत्रिम रूप से वहां पर जाना संभव नहीं है। जैसे आजकल ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी बात चल रहा है कि और पहले भी तो प्रयास किए थे और घोषित भी किए थे जैसे अमेरिका में उन इशार साथ कि हम वहां पर पहुंच गया, चंद्रमा पे पहुंच गया है, दिखाई भी था टीवी, सब लोग मानते थे वहां पर पहुंच गया है। लेकिन ये उनके चाल था, ये वैज्ञानिक लोग के कभी वहां पर पहुंच गए नहीं थे, संभव नहीं है। ये कृत्रिम रूप से तो वहां पर नहीं जा सकता है, लेकिन योग शक्ति के माध्यम से तपस्या करते हुए वहां पर पहुंच सकता है। और अगर ब्रह्म जी की या चंद्रमा की सूर्य की उपास्य कर रहा है कोई अच्छे तरह से साधना विधिवत पूर्वक करते हुए वहां पर जा सकता है, लेकिन ये भी दुर्लभ है वास्तव में। वहां पर पहुंचना है लेकिन संभावना है। लेकिन ये वैदिक साहित्य के अनुसार पद्धति पालन के अनुसार तो वहां पर पहुंच सकता है। तो लेकिन असुर लोग के लिए तो वहां पर पहुंचना, ब्रह्म लोग पे वहां पर संभव नहीं है। स्वर्ग लोग तक पहुंच सकता है जहां पर इंद्रदेव रहते थे, वहां पर भी पहुंच गए थे लेकिन प्रमद जी के 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 लोग पे नहीं पहुंच सकते थे। तो ये असुरों के लिए असंभव है। और प्रभुपद इसमें उल्लेख किया है कि वहां पर कि ब्रह्म जी के सत्यलोक पे तो उनकी आयु क्या है, इसमें उल्लेख किया है। भगवद गीता में भी कृष्ण ने सहस युग पर्यंतम हर यद ब्रह्मनो विदु, सहस युग तो चार युग जो होता है, ये हमारे कलयुग और इसके बाद द्वापर युग, त्रेत युग और सत्य युग, ये चार युग दिव्य युग कहलाता है। ऐसे 1000 दिव्य युग ब्रह्म जी के एक दिन है, वैसे ही उनके रात ऐसा है। तो 432,000 कलयुग के आबादी है, इसके 2 गुण द्वापर, इसके 3 गुण त्रेतयुग, इसके 4 बार ये सत्ययुग है। तो ये मिला के 4,300,000 मतलब 40 लाख कितना होता है, तो 42 लाख बाग, तो बहुत लंबे समय है उनके एक दिन, वैसे ही उनके रात। और जैसे हम 100 वर्ष तक रह सकता है, वैसे ही वे 100 वर्ष की आयु है, बहुत लंबे समय है। तो लेकिन उनके निष्ठा, तो उनके पास था निष्ठा, लेकिन वास्तव में इसका कोई मतलब नहीं है और कोई इसका कोई फल नहीं है अंतिम दृष्टि से, क्योंकि हम कृष्ण के नित्य दास है। और यह है कि परम गति है भगवान के धाम में वापस जाना, तो इसके लिए भगवान के प्रतिनिधि के पास जाना है और उनके मार्गदर्शन के अनुसार साधन भजन करना है, तपस्या भी करना है। और उनकी कृपा से, भगवान की कृपा से हम आगे जा सकता है और परम पदम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकता है। तो ये परम गति है। तो लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको निष्ठा के साथ और उत्सव के साथ हमको भजन करना है। जिसे रूप गोस्वामी पाद कहता है कि उत्सव निश्चय दारिया तत्त कर्म प्रवर्तन संगत त्याग सतोवृत्ते सद्वीर भक्तिर प्रसिद्ध थी। तो सिद्ध वस्तु पर पहुंच सकता है जब साधु के साथ रहता है, उनके मार्गदर्शन के अनुसार जब भजन करता है। और भौतिकवादी जो है और नास्तिक लोग, उनसे दूर रहना है। और जो अपराधी उनसे दूर रहना है। और हमेशा तो जो तत्त कर्म प्रवर्तनात्, जो जैसे नवविध भक्ति पंच महत्वपूर्ण भक्ति के अंग, इसमें लीन होना चाहिए और उत्सव के साथ निष्ठा के साथ आगे जाना है। और तैयार, जैसे वे तैयार थे उत्तम पर मतलब ये ब्रह्म जी के पाद पर पहुंचना है, अगर इस जन्म में नहीं पहुंचता है तो अगले जन्म में तो पहुंचेंगे। तो वैसे ही निष्ठा होना चाहिए और वैसे ही तो भक्त लोग भजन करते करते प्रयास कर रहे हैं इस जन्म ही उत्तम अवस्था पर पहुंचना, ये तो प्रयास कर रहा है। लेकिन ये भी कठिन है, आसान नहीं है, लेकिन कम से कम प्रयास करना है ज्यादा से ज्यादा आगे जाने के लिए। जिसे श्रद्धा से प्रेम अलग अलग अवस्था है, श्रद्धा साधु संगा भजन क्रिया नात निवृत्ति निष्ठा रुचि शक्ति भाव प्रेम। तो जब गुरु के पास वैष्णव के संग में रहता है और भजन करता है तो धीरे धीरे जो नात जो है चले जाता है तब निष्ठ के वस्त्र पर पहुंच सकता है। तो हमको तो यह है कि हमको प्रयास करना है अच्छा तरह से, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा आगे जा सकते हैं भक्ति मार्ग में। तो और भगवान दयालु है, और शुद्ध वैष्णव जो भगवान के प्रतिनिधि है, ये भगवान से भी दयालु है, तो उनकी कृपा से हम आगे जा सकते हैं, अन्यथा तो संभव नहीं है। तो इसलिए हमें इस भक्त के संग में रहना है, विशेष करके जो आगे है, और जब उनकी कृपा मिलता है तब आगे जा सकते हैं भक्ति मार्ग में। और अगर इस जन्म में उत्तम अवस्था पर नहीं पहुंचता है, तो जैसे कृष्ण भी कहते हैं भगवद गीता में, जिस अफसल असफल हो जाता है तो अगले जन्म ये वैष्णव के परिवार में जन्म ले सकता है, और इसे कतु है और आगे जा सकते भक्ति मार्ग में, और भगवान सहयोग देता है जिससे हम और शुद्ध वैष्णव उनकी कृपा से तो आगे जा सकता है। तो आज तो माघ मास की अमावस्या, कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन है अमावस्या, तो शुभ तिथि है। तो व्यवस्था में हर दिन जब भगवान केंद्र में है शुभ है, लेकिन फिर भी शास्त्र के अनुसार जैसे कार्तिक मास है और हर दिन शुभ है, लेकिन फिर भी माना जाता है, शास्त्र में उल्लेख किया है कि तीन शुभ तिथि है, एकादशी तिथि, अमावस्या तिथि एवं पूर्णिमा तिथि। इसलिए हम देख सकते हैं और देखता है कि उन तीन तिथियों में तेज ब्रिजवासी जो है, साधु लोग जो है, भक्त जो है, ये परिक्रमा करता है वृंदावन के या गोवर्धन के, वो ज्यादा जप करता है, विशेष ठाकुर जी की पूजा कर रहा है। और तो ये जैसे अलग अलग मास है, तो भगवान के नाम भी दिया गया है, जैसे कार्तिक मास दामोदर मास है, इसलिए सब हमेशा तो भक्त लोग के हर समय शुभ है, लेकिन फिर भी माना जाता है कि सबसे शुभ मास है ये कार्तिक मास। इसके भी विशेष मास है, इसके अलावा भी पुरुषोत्तम मास। और जो वैष्णव जो है कि जैसे पुरुषोत्तम मास और कार्तिक मास में ज्यादा भजन करता है, ज्यादा तपस्या करता है, जिससे वह आगे जल्दी आगे जा सकते भक्ति मार्ग में, क्योंकि तपस्या के बिना तो आगे जाना तो संभव नहीं है। ये भौतिक शक्ति छोड़ने के लिए तपस्या करना चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हम गुरु के अनुसार चलना है, और हमको और अच्छे तरह से जप करना है, और ज्यादा से ज्यादा कम से कम ना है। प्रभुपाद हमेशा कहते थे जिक्र के समय कितना माला जप करेंगे, भक्त लोग बोलते थे 16 माला, प्रभुपाद कहते थे कम से कम 16 माला। और तो कार्तिक मास के जो मतलब जो कोई साधु लोग जो है जो अच्छे तरह से भजन करता है, ये कार्तिक मास में तपस्या कर रहा है, ज्यादा भजन कर रहा है, इसके बाद माघ मास में भी, और इसके बाद वैशाख मास में भी, वैशाख मास में भी, और पुरुषोत्तम मास में। और जैसे ये प्रयाग में हर 12 साल तो कुंभ मेला है, हर 6 साल अर्ध कुंभ मेला है, लेकिन हर साल वास्तव में ये माघ मास में माघ मेला है, ये प्रयाग में, अलग अलग जगह में भी है, सिर्फ प्रयाग में ना है, दूसरे जगह पे भी। और आज उस समय अभी तो इस साल ये हरिद्वार में कुंभ मेला होगा ये अप्रैल मास में, और वृंदावन में अभी इस महीने में शुरू होगा वसंत पंचमी से ये कुंभ मेला है, हरिद्वार से पहले ये वृंदावन एक कुंभ मेला है। तो माघ मास शुभ मास है, और शुभ तिथि है आज, और यह कि जैसा हम इसके बारे में यहाँ पर पढ़ रहा है कि तो अंत के समय के बारे में तो सोचता है सब लोग, शरीर तो छोड़ना पड़ेगा हर लोग, हर व्यक्ति देहधारी जीव। लेकिन एक प्रकार जैसे युधिष्ठिर महाराज भी कहते थे, जब यमराज के एक बार जो गुप्त रूप में थे, और ये प्रसिद्ध लीला भी है, भगवान के जब वनवास में थे और प्यास लगता था, ये पंच बांधव को पानी लेना था रसोई के लिए, द्रौपदी मांग तो उनके लिए जरूरत था, रसोई में चाहिए पानी, तो पांडव को भेज दिया उनके, तो वहाँ पर एक कुंड पे पहुँच गए थे नकुल सहदेव, इसके बाद अर्जुन और भीम, और वहाँ पर कार्तिक वाणी बोले थे, सावधान अभी पानी मत पीना, प्यास लग रहा तो उसी समय, तो लेकिन ये शक्तिशाली थे सब ये पंच पांडव, उन्हें सोचे ये क्या है, ये इसका जो वाणी जो है जो बोल रहा है ये जो भी है, तो इसका पर्व करने जरूर ना है, पानी पी लिया और मर गया, क्योंकि ये जो गुप्त रूप में थे ये यमराज थे, तो सब मर गए ये। लेकिन ये कि जब युधिष्ठिर आए तो युधिष्ठिर सोचा ठीक है यहाँ पर प्रश्न पूछना के लिए बोल रहा है, तो अलग अलग प्रश्न पूछे थे और जवाब दिए थे सब प्रश्न के उत्तर दिए थे। एक प्रश्न भी था सबसे अद्भुत क्या है इस भौतिक जगत में, उन्होंने बोला कि हम देखता है कि पिताजी माताजी ये तो स्वाभाविक है मार जाता है, कभी कभी भाई और दोस्त भी मार जाते, कभी कभी बच्चे भी पहले मार जाता है, लेकिन फिर भी हम सोचता है कि हम तो नहीं मार जाएंगे, कम से कम आज ना है कल भी ना है कुछ देर के बाद, लेकिन कोई बात ना है। तो यह है, लेकिन फिर भी तो होना तो है, और वास्तव में हर क्षण एक मनुष्य के शरीर में जो होता है देहधा जीव, तो हर क्षण एक जीव तो के मनुष्य के शरीर में, तो मतलब उनके जन्म होता है पैदा होता है बच्चा, और हर क्षण कोई मर जाता है। तो आज भी आज की तिथि आज तो हमारे एक भक्त, मतलब ये कोई विशेष बात नहीं हमको मालूम है और क्या क्या करे हो जाता है होता है, लेकिन अगर कोई भक्त लोग का जन्म होता है या उनके देहांत होता है तो इसके बारे में थोड़ा सा तो महसूस कर रहा है, जब परिवार के हैं या और कोई कोई विशेष भक्त है, तो आज भी तो शुभ तिथि पे आज हमारे एक मत जी अपना शरीर छोड़ दिया है, जो बहुत सालों से यहाँ पर सेवा करती थी, तो प्रभुपद की सेवा करती थी, हमारे दीति रिपात्मा ने प्रभुपद के व्यास स्थान की सेवा जो होता है, जो सुबह के उनके वस्त्र बनना है और सफाई करना है, एक माता जी है सुभद्रा माता जी, लगभग मेरे ख्याल से 15 साल के लिए ये सेवा करती थी, बहुत अच्छा तरह सेवा करती थी, लेकिन अभी तो कम से कम 18 साल से पहले उनके, क्योंकि वृद्ध अवस्था पहुंच गए थे दोनों उनके उनके पति देव और वे, तो वृद्ध अवस्था में थे 80 साल से ऊपर, तो पहले प्रभु जी चले गया लगभग 1.5 महीने से पहले, और ये भी स्वाभाविक है जब प्रभु जी चले जाता है पति और स्त्री भी, तो उनके लिए क्या कारण है रहने के लिए है, तो उस आज सुबह शुभ तिथि पे आज के अपना शरीर भी छोड़ दिया है, तो बहुत अच्छा तरह सेवा करते थे ये दोनों अद्वैत प्रभु और सुभद्रा माता जी, कम से लगभग 15 साल के लिए अच्छा तरह से, लेकिन 6 महीने से पहले वृद्ध अवस्था में तो पहुंच गए तो सेवा छोड़ दिया, दूसरे को सौंप दिए थे, और 1.5 महीने से पहले प्रभु जी अपना शरीर छोड़ दिया है, और आज तो सुभद्रा माता जी अपना शरीर छोड़ दिया है। सुभद्रा माता जी की तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं जिससे वे जल्दी गोलोक धाम में प्रवेश कर सकते हैं। जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी दो मिनट के लिए और एक महापुरुष के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ जो बहुत सेवा किया है प्रभुपद के लिए भी और पूरे विश्व के लिए। आज के दिन 100 वर्ष से पहले 1921 ये बिहार प्रदेश में बक्सर डिस्ट्रिक्ट में तिवारीपुर गांव में एक भक्त का जन्म हुआ। एक ये श्री संप्रदाय के परिवार में और बचपन से तो जप करते थे, लेकिन जैसे हम तो हरे कृष्णा से शुरू करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन जो रामचंद्र के भक्त है ये हरे कृष्ण हरे राम से शुरू करता है, तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो जप करते थे बचपन से क्योंकि पिताजी माताजी भक्त थे। और इसके बाद बुद्धिमान व्यक्ति, भक्त लोग तो बुद्धिमान व्यक्ति तो है, तो स्कूल में बहुत अच्छे थे, इसलिए पुलिस में पद मिल गया था सेवा करने के लिए। और स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे थे, फुटबॉल खेलते थे और तो भजन करते करते इसके बाद तो पिताजी के आदेश अनुसार गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए थे। और इसके बाद उनके दो बच्चे भी लड़कियां पैदा हुई, और लेकिन उनकी इच्छा थी आगे जाने के लिए भक्ति मार्ग में। तो एक बार वहाँ पर उनके गांव में कोई गौड़ीय वैष्णव पहुँच गए थे, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के शिष्य, और वहाँ पर भजन का मतलब संकीर्तन करते थे, प्रचार करते थे, इसे प्रभावित हो गए थे। उन्होंने सोचे मुझे सब कुछ छोड़ना है। और इसके बाद जब उसी समय सिर्फ 26 साल के थे और सब छोड़ दिया और उनके गुरु महाराज के शरण में आए थे, भक्ति प्रियान केशव महाराज, भक्ति सिद्धांत के शिष्य जो प्रभुपाद हमारे प्रभुपाद के संन्यास गुरु थे, तो उनके पास पहुंच गया और दीक्षा ले लिया था। और गौ पूर्णिमा के समय और हरि नाम, और क्योंकि ये है ना ब्राह्मण कुल के थे, और उपनयन दोनों दीक्षा मिल गया थे एक साथ। और भजन करते करते उनके साथ लगभग 6 साल के बाद संन्यास आश्रम में प्रवेश किए थे। और इसके बाद तो उनके गुरु महाराज के साथ प्रचार करते थे, और उनके गुरु महाराज उनको तो यहाँ पर मथुरा में स्थापित किए थे, केशव जी गौड़ीय महाराज, जहाँ पर प्रभुपाद संन्यास लिए थे। और उनके शिष्य को बोल दिया आप वहाँ पर रहना है आपको और प्रचार करना है वहाँ से। तो उसी समय लगभग 40 साल के थे और वहाँ पर तो सेवा करते थे सन्यासी के रूप में। और इसके बाद तो प्रचार करते करते जब प्रॉपर वहाँ पर भी तो गए थे और सन्यास लिए थे, उसी समय हरे कृष्णा उनके सन्यास गुरु तो भक्ति प्रयाग केशव महाराज तो प्रवचन करते करते, और उसके बाद प्रभुपाद को भी बोल दिए थे आप कुछ बोल दीजिए, और अंग्रेजी भाषा में बोले थे तो उनके क्या विचार है। और उसी समय से उनके सन्यास गुरु और एक बाबा जी थे अकिंचन दास बाबा जी महाराज, ये भी प्रसिद्ध सिद्ध महापुरुष थे भक्ति सिद्धांत के शिष्य, और ये उनके शिष्य भक्ति वेदांत नारायण महाराज, ये सब ये तीन लोग अंग्रेजी भाषा समझ सकते थे। तो उसी समय जो यज्ञ अनुष्ठान जो होता है सब तैयार उन्होंने किए थे भक्ति वेदांत नारायण महाराज, और जो उसी समय सन्यासी थे, और दंड भी बनाया प्रभुपाद के लिए। और जब प्रभुपाद पश्चिम प्रदेश में गए न्यूयॉर्क में थे तो बहुत बार नारायण महाराज से पूछे कुछ सामान के लिए, जैसे मेरी दांगा करताल, और यहाँ पर न्यूयॉर्क में राधा कृष्ण मूर्ति है, छोटे मूर्ति जो है, और जो सबसे पहले राधा कृष्ण की मूर्ति तो यहाँ से भेज दिए थे, और पोपट को ये मथुर के पेरे, मथुर के पेरा आपको मालूम है ना, मथुर के पेरा तुमको अच्छा लगता था प्रभुपाद, तो नारायण महाराज को भी बोले थे आप भेज दीजिए, तो मात्र से अमेरिका न्यूयॉर्क पर तो भेज दिए थे ये मथुर के पेरे, और तो बहुत सेवे किए थे इस प्रकार से जो कुछ प्रभुपाद शुरुआत में, क्योंकि उसी समय उनके पास कुछ नहीं थे, भक्त लोग भी नहीं थे, बाद में तो उनके शिष्य थे और सब कुछ प्रभुपाद जो उनको चाहे तो भेज दिया था, और लेकिन अंत के समय भी शरीर छोड़ने से पहले कई बार उनको बुलाए थे नारायण महाराज को, और उनको भी बोल दिया कि मैं अभी जाने वाला हूँ, और तो उन्होंने बोला कि जो अंतिम जो संस्कार जो होता है उनको समाधि देना, ये कार्य आपको करना है, और आपको भी मालूम है जो वैदिक संस्कृति वैष्णव जो संस्कृति के अनुसार अगर कोई परिवार में मर जाता है तो अंतिम संस्कार कौन करता है, कौन सा बेटा, बड़ा है ना, अगर बड़ा नहीं कर सकते तो छोटा करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा है, तो क्योंकि यह है कि नारायण महाराज उनको विधि सब कुछ मालूम था अच्छा तरह से, और घनिष्ठ संबंध था प्रभुपाद के साथ, इसलिए उनको बोले थे कि आपको ये पूरा ये जो समाधि की व्यवस्था जो है आपको करना है, और उन्हें भी किए थे। और एक और बात यह है कि तो भक्त लोग को थोड़ा सा मार्गदर्शन के लिए भी बोले थे नारायण महाराज को, और इसके बाद भी जो एक बार उनको भी निवेदन किए थे नारायण महाराज से कि ये जो बहुत सुंदर जो प्रसिद्ध गीत है नरोत्तम, श्री रूपा मंजरी पादा से मोरा संपादा से मोर बजाना पूजाना से मोरा प्राणदाना से मोरा बराना से मोर जीवन राजीवाना। तो उन्होंने ये गीत गाने के लिए निवेदन किए थे, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद भी उनके मतलब शरीर छोड़ने से पहले भी उनके एक प्रमुख शिष्य को सिद्धा महाराज को बोले थे, जो एक मतलब सुंदर ढंग से नहीं गा सकते थे लेकिन फिर भी उनके भाव था, इसलिए उनको बोल दी अब ये आप कृपा करके इस गीत गाइए। तो नारायण महाराज को भी बोल दिए थे एक बार जब यहाँ पर आए थे उनके घर पे। और यह है कि क्योंकि हमको समझना चाहिए कि हमको ये हम अपने आप को रूपनुग वैष्णव कहलाता है, तो रूप गोस्वामी का अनुगति हम चलता है, ये एक तो प्रकट करने के लिए तो ये रूप गोस्वामी का अनुगति चलना है। इसके बाद यह है जब थोड़ा सा आ गया है, जब क्योंकि पहले वैदिक भक्ति के अनुसार हमको चलना है, लेकिन इसके बाद राग मार्ग में प्रवेश करना है, और रागानुग भक्ति के माध्यम से गोलोक वृंदावन जा सकता है प्रकट लीला में, जहाँ पर कृष्ण प्रकट ये इसमें प्रकट लीला में, क्योंकि तुरंत गोलोक धाम नहीं जा सकता है, पहले जहाँ पर कृष्ण की प्रकट लीला है वहाँ पर जाना है, और वहाँ से जा सकता है। इसमें भी उल्लेख किया है महाप्रभु भी, उन्होंने बोला है कि राग मार्ग के बिना ब्रज में नहीं प्रवेश कर सकता है, तो सबसे पहले रूप गोस्वामी के अनुसार चलना है, इसके बाद रूप मंजारी के अनुगत्य में हमको शरण भजन करना है, इसे करते हुए सिद्ध वस्त्र पर पहुंच सकता है, तब कृष्ण लीला में प्रवेश कर सकता है, और वास्तविक आदान प्रदान होता है कृष्ण के साथ। तो इसके लिए तो उनसे भी तो भारी है कि मतलब यह है कि उन्होंने भी प्रचार किया पूरे विश्व में रागनु के भक्ति के रूपनु के भजन कैसे करना है, और इसलिए उसी दिन हम उनसे धन्यवाद कहना चाहता है क्योंकि घनिष्ठ संबंध उनके साथ भी है, और तो उनकी कृपा जब मिलता है, महापुरुष की कृपा जब मिलता है तो आगे जा सकता है, और उनके प्रिय मतलब प्रभुपाद के साथ बहुत तो ये घनिष्ठ संबंध था, प्रेम संबंध था। और ये भी है कि तो ये हमारे कर्तव्य है क्योंकि उनको मतलब ये हमारे साथ के संबंध है। आज उनके व्यास पूजा है, सुबह से पहले तो शताब्दी के समय उनका थोड़ा सा दो दिन बाद बोलना कि हमारे कर्तव्य था, इसलिए मैंने कुछ बोला है। श्री श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण महाराज की, श्री श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्णा।